परमात्मा। मैंने ये बात सुनाई कि मन के लगाने की बात इतनी महत्व की नहीं, जितनी मन में जो राग है, आसक्ति है, पदार्थों के, रुपयों के प्रति, भोगों के प्रति जो खिंचाव है, इसके त्याग की आवश्यकता है। गीता जी का प्रसंग सुनाया कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, इसकी परीक्षा की जाए कि भगवान किस बात पर ज्यादा बोले हैं। वो अपने भाव की बात बोलने से निकलती है। उनसे कोई पूछेगा तो भीतर में भाव होगा, वो बात विशेष कहेंगे। तो भगवान ने साधन के ऊपर और एक अंतकाल की स्मृति के ऊपर बहुत लंबे बोले भगवान, इतना और पर नहीं बोले। और मन की एकाग्रता के विषय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा तो अर्जुन के भी दो श्लोक है और भगवान के भी दो श्लोक है। एकाग्रता के ऊपर ज्यादा भगवान नहीं बोले। दो श्लोकों में भी देखा जाए तो आधा श्लोक तो अर्जुन की प्रशंसा कर दी। अर्जुन ने कहा कि महाराज चंचल मन कृष्ण प्रभात बलव दृढ़ तस्याहं निग्रह मन्ये वायो युष्म दुष्करम। जैसे वायु को कोई मुट्ठी में पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ सकता, प्राणवायु को भी एक महाराज रोकना चाहे तो नहीं रोक सकता। इस तरह से मन है बड़ा भारी, चंचल है, ये रुकना बड़ा मुश्किल है। अर्जुन ने ऐसा कहा तो भगवान ने कहा असल स्वयं महाबाहो मनोदुर्निग्रह चलम। भैया तुम ठीक कहते हो, मन दुर्निग्रह है, इसका निग्रह नहीं होता, बड़ा चलायमान होता है, चंचल है, सच्ची बात है। किंतु अभ्यास है तो कौन थे वैराग्य से गृह थे, वैराग्य और अभ्यास से ये पकड़ा जा सकता है। आधा श्लोक करो, आधे श्लोक पंडित साहब तुम ठीक कहते हो, आधे में उपाय बताया। अगाड़ी कहते असंगयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति। जिसका मन अपने वश में नहीं है उसको योग प्राप्त होना कठिन है, और जिसका मन वश में है वो उपाय करे तो योग को प्राप्त कर सकता है। ये बात भगवान ने अपनी तब से कही। तो मन वश का अर्थ है कि मन में जो संसार पदार्थों की आसक्ति है, प्रियता है, ये ही खास घातक है। कारण गुण संगोष्य सदसत योनि गर्मसु। ऊंच नीच योनियों में जन्म का कारण है संग, गुणों का संग। संग नाम है प्रियता का। मन में जो प्रियता है ना, ये वास्तव में पतन करने वाली है। वो प्रियता दो जगह है मनुष्य की, अगर देखी जाए तो व्यापक। एक तो धन में है, संग्रह करने में कि अधिक से अधिक धन आ जाए। एक है सुख भोग में, मैं सुख भोग में। ये दो खास आ सकती है। उसके लिए भगवान ने कहा कि भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम तयाप रित सा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में जो अत्यंत आसक्त है सुख भोग में, और ऐश्वर्य मन संग्रह करने में। ऐश्वर्य बड़ा प्रभाव हमारे पास में, ऐसा हो जाए मकान भी ऐसा हो जाए, अमुक अमुक संपत्ति हो जाए, इतना धन हो जाए, धन की इतनी संख्या बढ़ जाए, ये जो अंडू ऐश्वर्य में आसक्ति और सुख भोग में आसक्ति। उनको परमात्मा की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती, परमात्मा की प्राप्ति करने का विचार भी पक्का उनके नहीं ठहरता। सत्संग के द्वारा सुनकर विचार द्वारा कुछ विचार कर लेते हैं कि परमात्मा की तरफ चलना है, वो बिता विचार भी उनके ठहरेगा नहीं, वो टिकेगा नहीं। सत्संग में विचार हो जाएगा फिर हो जाएगा। कारण उसमें क्या है, ये दो कारण, भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति, इसमें प्रियता। तो चंचलता है वो इतना दोष नहीं है, इतना दोष ये दोष बढ़ जाए फिर चंचलता हटना बहुत सुगम, सीधी बात, बहुत सरलता से चंचलता हट सकती है। तो सुख और संग्रह ये दो चीज है। तो संग्रह की आसक्ति मिटे और सुख की आसक्ति मिटे। संग्रह चीज दोषी नहीं है, संग्रह हो जाए ये भावना महान दोषी है। लाखों करोड़ों रुपया भी आपके पास रह जाए तो आपको नहीं बांध सकते। एक बॉडी भी नहीं रहे पर रुपया बहुत बढ़िया चीज है। हाय रुपया, हाय रुपया मन में लगी है तो बंधन होगा ही, बोले कौड़ी एक पास में। इनका जो महत्व चित्त में अंकित है ना, तो रुपया एक बड़ी भारी चीज है। ये महत्व इसके सामने भजन स्मरण सत्यवादिता आदि आदि कोई चीज नहीं, सबसे बढ़कर ये महान पतन करने वाली चीज रुपया पैसा है। तो रुपये पैसे की आसक्ति खिंचाव बन का है, ये महान पतन करना है। और सुख भोग पदार्थों में सुख है, सुख ले ले, आराम ले ले, ये भोगा सकते, ये महान पतन करने वाला चीज है। इसका विचेतन वहां सुबह भी किया और 7:30 से 8:30 तक सत्संग होता उसमें भी किया। तो वास्तव में बात यह है, सब भाई और बहनों से कहना है, ये जो मन में इनका महत्व बैठा है, प्रियता बैठी है, ये महान अनर्थकारी है। फिर हमारे सामने प्रश्न आया कि ये प्रियता हटे कैसे, ये कैसे दूर हो, ये उस पर थोड़ा ही बोला तो पीछे जाकर प्रश्न आया। हम तब समय ज्यादा था नहीं, तो ये मन से कैसे हटे। इसके हटने के हटाने के लिए उपाय बड़ा सरल है और बड़ा रामबाण उपाय जरूर हटे, परंतु भाई तत्परता से करने से, सुनने मात्र से नहीं। पक्का विचार हो जाएगा हमारी आसक्ति हटाना है, ऐसा विचार आपका पक्का चाहिए फिर उपाय लागू होगा, और विचार कच्चा होगा तो उपाय लागू ऐसा नहीं। उपाय करने से फायदा जरूर होगा ही, इसमें संदेह ही नहीं, परंतु पूर्णता हो जाए उसकी, वो बात तो खूब लगन होने से होगा। किस तरह से ये हटे, ये अनर्थ का हेतु है, रुपये अनर्थ के हेतु नहीं, परिवार अनर्थ का हेतु नहीं, सुख सामग्री आपके पास में वो पतन का हेतु नहीं। इसमें जो प्रियता है, मेरे पास रहे, मैं सुख भोग लूं, आराम मिले, मैं धनी कहलाऊं, मेरे पास धन इतना हो, ये जो आसक्ति है ये पतन करने वाली चीज है। और इनसे सिवाय नुकसान के कोई किसी तरह का फायदा नहीं, केवल नुकसान ही नुकसान है। फायदा कोड़ी ये करी, क्या मन की चाहना से धन मिल जाता है क्या, क्या मन की चाहना से भोग मिल जाते हैं, नहीं मिलते। पतन जरूर हो जाता है, फायदा किसी तरह का ही नहीं। बात है पर तो सुनते ठीक लगती, फिर रुपये मत बन जाता है। तू कैसे हटे, तो इसके लिए सुख भोग की इच्छा होती है वो कैसे हटती है, तो शास्त्रों की बातें तो बहुत सी है, परंतु आप भाई बहन विचार करें तो अपने अनुभव की बात बताओ। अनुभव की, जिस माँ की गोदी में बालक है, बालक अगर भूखा है तो बालक की भूख मां नहीं सह सकती। थोड़ा सा अन्न मिलेगा, कोई चीज मिलेगी तो खुद भूखी रह जाएगी, बालक को भोजन करा देगी। रेलगाड़ी में देखा है बैठने के लिए जगह नहीं है, एक मां की गोदी में बालक है तो उसे अपने गोदी में सुला लेगी, उसको आराम देगी। तो दूसरे को आराम देने से अपने आराम की इच्छा मिटती है, ये सर्वसिद्ध बात है, एकदम पक्की बात है। तो दूसरों को सुख कैसे मिले, आराम कैसे मिले, ये अगर लगन लग जाए तो अपने आराम सुख भोगने की इच्छा मिटेगी। और इसी उद्देश्य से देवे दूसरों को सुख, कि हमारी जो सुख भोग की इच्छा है ये मिट जाए, इस भावना को रख करके सुख दिया जाए तो जरूर अपने सुख की इच्छा मिटती। मेरे को तो एक संत ने कहा था, किसी के मीठा खाने की बहुत ज्यादा शौक है तो जिन बालकों को रोटी भी तंगी से मिलती है ऐसे बालकों को मिठाई दे, कौन सी जो अपने को बढ़िया से बढ़िया मिठाई लगती हो, ऐसी मिठाई बना करके और ले जाओ बच्चों को दे, और वे राजी उनको देखता रहे, कीर्तन करावे उनसे, ऐसे दे तो उसे खाने के मन में वो कम हो जाए, करके देख लें ये तो उपाय ऐसा है, तो करके देख लें जरूर लागू होता है। इसमें संदेह दूसरे के सुख पहुंचाने की इच्छा से अपने सुख भोग की इच्छा मिटती है, और जो दूसरों को सुख ना दे, अकेला भोजन करता है, अकेले चीज खाता है, अब तक अकेला रस रहता है, उसमें तो बढ़ेगी मिटेगी कभी नहीं मिटेगी। ये बात हो जाए कि तो दूसरों को सुख देना है, क्यों देना है कि सुख लोलुपता हमारे मन में इसी से अनर्थ होते हैं, जन्म मरण होता है, ऐसा विचार करके दूसरों को सुख कैसे पहुंचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगली होता रहे, किसी को कभी किंचित मात्र भी कष्ट न हो, ऐसा भाव जमाओ घर में से। साहस है तो ये भावनाएं कर लो, बहुत सुख कैसे, पर छोटी हो बड़ी हो कोई हो, बेटी को सुख कैसे, लड़कों को सुख कैसे, पति को सुख कैसे हो, अपने सिवाय दूसरों को आराम कैसे मिले। दुख पाड़ा है मैं पालू अकेले, पर आराम कैसे मिले। इसमें कामना के त्याग की बात गीता ने बहुत कही है, वो कामना का असली स्वरूप क्या है, कामना आसक्ति, कामना असली स्वरूप कि मेरे मन की बात है, बहू भी मेरे मन की बात करे, बेटा भी मेरे मन के अनुसार चले, नौकर भी मेरा कहना करे, पति भी मेरा कहना करे, देवर देव ससुर भी मेरा कहना करे, ये जो मन में इच्छा है इसका नाम है कामना। ये घातक है, उनका कहना मैं करूं, वे किस बात में राजी है, वो बात होनी चाहिए न्यायुक्त, पाप की अन्याय की नहीं, शास्त्र और मर्यादा से विरुद्ध की बात नहीं। ऐसी बात को लेकर के वो अगर कोई चाहे तो उसकी इच्छा कैसे पूरी हो, बहू हो चाहे बेटी हो, चाहे देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, चाहे सास हो, चाहे ननद हो, कोई ज्ञान हो, ऐसा भाव और बहना विचार लगे, पक्का विचार करे तो ये जो सुख भोग में आकर्षण है ये कम हो जाएगा। देने से कम होता है, लेने से कम नहीं होता, तो देने का उद्देश्य बना लेंगे, इनको आराम कैसे मिले, इनके मन की बात कैसे पूरी हो, इनको सुख कैसे मिले, ये अगर विचार करके उनको सुख दो अपनी शक्ति के अनुसार, उसमें कोई सबको सुखी कर रहे ये बात हाथ की नहीं है। एक आदमी सब परिवार को सुखी बना दे ये हाथ की बात नहीं, दुनिया मिलकर के एक आदमी को सुखी कर दे, उसके मन की आशा पूरी कर दे, संभव नहीं। तो एक आदमी सबकी आशा कैसे पूरी करेगा, पर तो भाव ये हो जाएगा हमारी शक्ति है, हमारे पास समय है, हमारे पास सामग्री है, हमारे पास समझ है, उसको हम न बचा करके और दूसरों को सुख पहुंचाने का भरसक प्रयत्न करें अपनी शक्ति के अनुसार, और उतना ही करना है, अधिक नहीं करना। सुखी बना देने का ठेका नहीं, उसके चाहिए वो सुख मेरे पास शक्ति है तो अपनी शक्ति पूरी की पूरी खर्च कर दे उस सुख के लिए, इतने पर वो सुखी हो न हो ये ठेका नहीं। मनुष्य ये समझाए उसको सुखी करने से होगा, तुम अपना सुख उस सुख के लिए दे दो, वो सुखी हो न, इतनी आप पर जिम्मेवारी है, सुखी बना देना जिम्मेवारी, बट उस सुख के लिए अपना सुख बिल्कुल छोड़ दो, या तो उसको सुख कैसे हो, इसलिए से उसको सुख आराम पहुंचाओ, तो ये सुखासन की मिल जाएगी। ऐसे धन है भगवान ने दिया है तो अच्छे से अच्छे काम में लगाओ, वो भी मान बढ़ाई के लिए, नाम गिरी के लिए, वाह वाह के लिए लगाओगे तो भाई आशक्ति छूटेगी नहीं, ये बढ़ेगी। तुम साथ साथ आप तो खरीद रहे हो, भोग खरीद रहे हो, बढ़ाई खरीद रहे हो, आदर खरीद रहे हो, आप तो भोग खरीद रहे हो, व्यापार है, व्यापार से कैसे मिटेगी आसक्ति, कैसे मिटेगी, व्यापार में धन बढ़ता है। तो ये नहीं पता ही नहीं लगे किसी को किसने सुख पहुंचाया, यार मेरे द्वारा सुख हो जाए, आराम हो जाए, हमारी वस्तु दूसरों के आराम के लिए, सुख के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए लग जाए, ये मन में जितना अधिक भाव होगा और त्याग जितना अधिक होगा भाव सुख भोग का, इससे महाराज जी उपासन की मिट्टी, ये मिट्टी है जरूर, इसमें संदेह है। जोधपुर में एक ब्राह्मणी माजी, अब से ही शांत हो गया, हम उनको माजी माजी कहते थे, पूरी ब्राह्मणी, एक महेश्वरियों की लड़की विधवा हो गई थी, वो माजी माजी कहती, उनकी सेवा करती, उनका आपस में सत्संग का ही संपर्क, वो ब्राह्मणी विमानी और जैसे माँ बेटी हो जिस तरह से आपस में रहती सत्संग करती, तो वो लड़की अपने ससुराल में थी, उसका शरीर शांत हो गया, तो माँ जी को बड़ा दुख हुआ। तो जैसे माँ बेटी का संबंध हो तो बेटी के चले जाने से माँ को दुख हो जाए, ऐसी बात वो स्नेह था, इस बात से माँ जी को दुख हुआ। मेरे जाने का काम पड़ा, मैंने कहा माँ जी आप नाम जप करो, उसके नाम से कीर्तन करो, और आपके पास हो तो बच्चों की सहायता करो। ऐसे किया, करने से वो माँ जी से मैं पीछे मिला, माँ जी ने कहा मेरा दुख कम हो गया। दूसरी जगह पांच दो दो भाई बड़े बड़े, उनकी माँ का शरीर शांत हो गया, तो बेटा भी याद करे भोगों भी याद करे, तो सासू पर भोगों का बड़ा भाव, ससुर पर भी बड़ा अच्छा सद्भाव, माई तो कि हम सेवा करें, ये उनको होगा बड़ा अच्छा, हरेक जगह ऐसा भाव मैंने देखा, इतना भाव, उस सास का सही शांत हो गया, तो दोनों बेटा और बहुआ और बेटी सभी दुखी, स्वभाव अच्छा था सासू का, वो प्यार करती थी और वे सेवा करती थी, उनको मैंने ऐसे कहा उन नाम का कीर्तन करूं, उनके नाम से पाठ करूं और ऐसे दान पुण्य करूं, ऐसे किया तो उनका सुख, ये बात एकदम सच्ची है कि दूसरे को सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, ऐसा भाव रखने से अपनी आसक्ति मिटती है। पैसे वालों को भी मेरे कहने काम पड़ा, और पैसे वाले करते भी है, रोजिना दो चार रुपयों का पैसा है, दो अन्य है, चौनी है अथवा चिना ही है, कुछ न कुछ रोजिना कई बार दिन में दे, ऐसे देने से जो पुण्य होता है वो एक साथ से नहीं होता, एक साथ आपने हजार रुपये दे दिए, और वही हजार रुपया आप बारह महीना तक थोड़ा थोड़ा खर्च करते करते खर्च कर दिया, तो वो जो थोड़ा करते करते खर्च किया उससे जितना पुण्य होगा उतना पुण्य हजार का नहीं होगा, और ऐसे मत समझना कि हजार क्यों दे, ऐसे ऊंधी बात मत पकड़ना, हजार दो, दस हजार दो, लाख दो, बहुत ही बढ़िया बात, बहुत ही उत्तम बात, भगवान ने पैसे दिए हैं तो दो जरूरी, उससे फायदा होगा, परंतु रोजाना देने से एक स्वभाव पड़ेगा और देने की आदत बनेगी, और दूसरे के दुख देखते ही चित्त प्रवृत्त एक दिन द्रवित हो जाएगा, पिघल जाएगा, उससे जो असर पड़ेगा मन पर उससे वो आसक्ति मिटेगी सुख भोग की और संग्रह की। तो प्रवाह अभी लेने लेने का प्रवाह है ना, कमाओ लेओ झूठ कपट बेईमानी किसी तरह ले लें ले लें ले लें, तो पकड़ने ही पकड़ने की आदत हो रही है, तो फिर वो बढ़ेगा ही, तो देने की आदत हो जाए कितने ही सुख पहुंचे, आराम पहुंचे। कलकत्ते में एक मुसलमान, वो भी सत्संग की बातें पूछा करता है, आजकल ईरान गया हुआ वहां नहीं है कलकत्ते में, वो सज्जन आदमी है, धनी आदमी, उसकी ये आदत है महाराज, पांच दस रुपयों को चौने चौने लिया और अपने प्रेमी उनको दे दिया, इतना आप खर्च कर देना, इतना आप ले लेना, दे देता है आप दे देना, और वो भी सिर्फ देता है, कहीं सुना लाया लाल लाल थे बड़ी कितने की पता नहीं है, वो देनी मेरे को भी दी, औरों को भी दी, विद्यार्थियों को दो, बांट लो पैसे, औरों को दे तुम दे देना, आप दे देना, कोई दे देना, ये दे देता है चौनी अठन्नी दोनी ऐसे, ये चाल उसी फिर वो अच्छी बनी, इस तरह से भोजन करा दिया, किसी ने रोटी दिला दी, भाई होटल में सिर्फ रोटी दे दो भाई शुद्ध चीज खाने, भूखा है कोई तो तुमको फिर भोजन दे दिया, पैसों से उतना पुण्य नहीं होता जितना अन्नदान से पुण्य होता, अन्न से तृप्ति होती है एकदम, ऐसे अन्न से तृप्ति होती, इसी तरह से गरीब बालकों को अच्छे काम में लगा दो। देकर आप इतनी सहायता नहीं कर सकते, कहां तक करोगे? और उसको धंधे लगा दो किसी तरह से, तो पैदा होने लग जाए तो उसकी जीविका चल जाए, उसका पुण्य मामूली व्यापारी की कुटुंब का पालन कर दिया आपने, वो करने से पास में दिया कुछ नहीं, लोगों में कुछ क्या दिया, कुछ दिया ही नहीं, पर तो काम में लगा दिया। इस तरह से लोगों को काम में लगा दे, जीविका उनकी शुरू हो जाए, भाव क्या रहे, इनका उद्धार कैसे हो, इनका सुधार कैसे हो, इनको आराम कैसे मिले, इनके कुटुंब का पालन कैसे हो, ये भाव आपका जागृत रहेगा, वो भाव बड़ा बड़ा आपका कल्याण कर देगा। और वो संग्रह की रुचि है ना, मेरे धनाव मेरे धनाव है, ये महाराज पतन करेगी महान, पर जो धन कमाने वालों के मन में महाराज ये दया उठ जाती है, क्रूर हो जाता है, हृदय बड़ा कठोर हो जाता है। माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, बूढ़े बाप दादा उनकी सेवा नहीं कर सकते, नर्स और रख लेंगे, नौकर रख लेंगे, वो सेवा नहीं कर सकते, तो नौकर रख ले अच्छा है, किसी तरह से सेवा बन जाए माइतों की अच्छी है, पर बढ़िया तो वो है अपने हाथ से सेवा करो, स्वयं हाथ से खट कर दी परिश्रम कर दो, आप नौकर रखो सब जगह नौकर रखो, पर माइतों की सेवा के लिए ठाकुर जी की सेवा के लिए नौकर रहे, और भी हम करें ठाकुर जी की सेवा हम करें, माइतों की सेवा अपने हाथ से करें, तीसरे कदम तो उससे अंतर्गत शुद्ध होगा, निर्मल होगा। ये करो आप। यहां बंबई की बात एक मैंने सुनी, एक हमारे परिचित सज्जन है कलकत्ता रहते हैं, तो वो यहां थे, वहां उनका भतीजा रहता, तो कहा भाई ये विदेशी लोग आते हैं ना मंदिर बनाते हैं कीर्तन करते हैं, ये आ गया तो रहना है भतीजे ऊपर आए। फिर वो गए, वो तो बाहर चले गए, पीछे से आए उनको दिया नहीं, आकर पूछा भाई उनको दिया है कि क्या दे रहे हैं, हम क्यों दे रहे बताओ, कोई हमारे क्या काम आते, हमारे काम धंधे में व्यापार में कोई काम आते, ऐसे मृत कहीं दिए जाए, उस काम में ही नहीं आते, उनको दिया क्यों जाए, नहीं दिया कुछ, तो आप देते हो तो आप क्षमा कर आपके लिए नहीं करता, देते हैं तो कोई न कोई मतलब समझ करके, ब्राह्मणों किसको देगा, अपने सगे का ब्राह्मण है उनको दो, जो वे अपने ब्राह्मण को देंगे तो अपने काम ठीक होगा, ऐसे टटोल कर देते हैं, ये काम आ जाए ब्राह्मण तो उनको दो जो हमारे भक्त पर काम आ रहेगा। एक संत थे, उनके पास में एक भाई दुशाला लेकर गए, अच्छी दुशाला दिया, उस साधु ने कह दिया दुशाला का हम क्या करें, तो महाराज आपको दुशाला देने से एक गुना दान हजार गुना पुण्य होता है। अच्छा विश्वास देते बहुत ठीक, तो हजार तो भैया होगा तो एक तो पोट ले गया, 999 पीछे बात भी रहा फिर चला गया, एक तो उतारे 999 कर जा रहा मैं, एक तो जल्दी उतार नहीं तो इतना कर्जा कैसा रखे भाई, हजार दूसरा कहां से लाऊंगा, कहां से दूंगा, कब तक दूंगा बताओ, इतना तो उतरे एक श्री गणेश भैया हम नहीं रखेंगे भाई, ज्यादा कर्जा हो जाए ऐसे तो देंगे तो लेने के लिए, देंगे तो लेने के लिए, तो दो तो ही लेते हो, ले रहे हो तो लेते हो, तो लेते हो तो क्या होगा, पतन होगा, पतन 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 याद करो, ये लेना बढ़िया चीज नहीं है। समुद्र में जाकर पानी लेने लगे जोर जोर से डूब जाएगा, और हाथों से लातों से मारता रहेगा पार हो जाएगा, संसार समुद्र है इसमें लेने की इच्छा से डूबेगा, और चीज तो रहेगी नहीं पास में, और दुख साथ में रहेगा, पाप साथ में रहेगा, कितने ही पाप अन्याय करके धन कमाया एक कौड़ी साथ नहीं रहेगी, पर पाप किया वो कौड़ी एक भी पीछे नहीं रहेगा, सबका सब साथ चलेगा। अरे आदमी समझता है तो उन्हें बड़ी चतुराई की, लोग भी समझते हैं कि बहुत काम किया साहब, लखपति बढ़ गया, करोड़पति बढ़ गया, वाह वाह बड़ा होशियार है, अरे होशियार कान महान मूर्ख है, यहां रहने वाले धन के लिए अगारी का सत्यानाश कर दिया, सदा चलने वाला सदा साथ करने वाले पूंजी का तो नाश कर लिया, लोगों को एक धुन देती हुई है कि जो हमारे पास नहीं है उस चीज को हम प्राप्त कर ले तो हमने उन्नति की। तो धन नहीं है धन पैदा कर ले, विद्या नहीं है पढ़ करके विद्वान बन जाए, आदर नहीं है हम ऊंचा पद प्राप्त कर आदर प्राप्त कर ले, हमारे पास कोई पद नहीं है अधिकार नहीं है पद प्राप्त कर ले अधिकार प्राप्त कर ले तो खुशी आती है कि हमने बहुत चीज प्राप्त कर ले ठीक कर लिया। और भी लोग कहते हैं देखो तो साधारण आदमी था आज कितने बड़े पद पर नियुक्त हो गया है, नहीं था वो प्राप्त करने में बहादुरी मानते हैं, महान मूर्खता है। आप क्षमा करना भाई, आप किसी के मन के विरुद्ध पड़े तो क्षमा करना और प्रार्थना की मेरी बात सुन लेना। आपके पास अभी नहीं है वो चीज मिलेगी तो अंत में नहीं रहेगी, नहीं तो उसका मूल है फिर रहेगी कैसे, आरंभ में भी नहीं है और अंत में भी नहीं रहेगी। चाहे तो वो पद नहीं रहेगा, चाहे आप नहीं रहोगे, चाहे दोनों नहीं रहेंगे, ये तीनों में से बात होगी, नहीं रहेगा तो होगा ही नियम से है एक बार। तो आपके प्राप्त करने की बहादुरी किसकी है जो सब जगह है सर्वदा है सबके है ऐसे होते हुए परमात्मा को प्राप्त कर ले तो आपकी बहादुरी है, फिर वो जाएगा ही नहीं क्योंकि नहीं जानते पर भी परमात्मा है, नहीं मान रहे पर भी परमात्मा है और वो नित्य ही प्राप्त है, उसको प्राप्त कर लो फिर अभाव नहीं है, उसकी प्राप्ति करना है ये बात भी है, ये सच्ची बात है। ये धन संपत्ति वैभव वाह वाह ये तो भाई ठगाई है धोखा 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 दिखता है बड़ा अच्छा और जो मिलेगा कुछ नहीं, काठ के लड्डू हैं सुंदर घरे हुए रंग सजाया होती है लड्डू है तो दूर से आदमी देखे उनको लड्डू मिल गए खाते हैं दांत टूट जाते हैं, दूर के देखते हैं कि लड्डू खा रहा है तो बड़ा अच्छा है तो पर खाता है वो जाने उसमें काठ के पत्थर के लड्डू चना के लड्डू लो के लड्डू और खाओ। इस तरह से लोगों को देखता है ये धन लिया सर ये बड़े ऊंचे आदमी बड़ा पद मिल गया अधिकार मिल गया पर खुद के चिंता ज्यादा लग गई पहले से। आप भुगत भोगिए देख लो थोड़ा धन होने पर चिंता कितनी होती है ज्यादा होने पर कितनी होती है। पहले तो मरा चोरों से डाकुओं से डरते थे और कहीं आप हो तो राज को पुकारते थे, आज राज से ही डर के किसको पुकारेंगे बताओ, कहां जाकर रोवे कि हमारा दुख मिटाओ। एक छोकरों की कहावत आती है गुड़ है वो जाकर ब्रह्मा जी के पास कहने लगा कि महाराज जो आयु खा जाता है मुझे कीड़ी मकोड़ी खा जाए मनुष्य खा जाए पशु खा जाए पक्षी खा जाए जहां जाऊं मैं लोग खाते ही खाते हैं मेरी कोई रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा अबे मन तो मेरा भी चलता है अब किसको पुकारे बताओ, यह दिशा हुई है तथा सर्वत्र विद्यमान ऐसे धनवान सब चाहते धनवान के ब्राह्मण भी चाहते हैं साधु भी चाहते हैं अफसर भी चाहते हैं राज भी चाहता है समाज भी चाहता है चोर भी चाहता है डाकू भी चाहता है किस तरह से ये पंजे में आ खाऊं खाऊं कर रहे और वो समझे कि मैं धन रख लू इतनी डाकी है तुम्हारा धनी के पीछे और धनी आदमी डरता साधुओं से ब्राह्मणों से। कई वर्ष पहले कलकत्ते में मेरे से एक साधु ने एक सज्जन ने कहा था कि स्वामी जी आप मांगना नहीं मुश्किल हमें नहीं मांगे मुश्किल नहीं मांगे उनको बैब है इनसे कहीं प्रेम हुआ ये मांगना राबित हो जाएगी देंगे तो मन खर्च हो जाएगा नहीं दें तो मन खराब हो जाएगा क्या करें तो पहले से प्रबंध कर दिया मांगना नहीं मांगेगा इतनी धरती। एक भाई ने कहा वो मांगते हैं घाट पर भी ऐसा तो समझ आप ही वो पैसा मांगा करते गए पहले मेरे तो याद तो नहीं मैं समझ रहा हूँ मानते फिर बात ठीक ही। तो ये बात भीतर में जसी हुई है उसी के अनुसार अटकल और हम पर लगाते हैं, ये ख्याल नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो भाई ये धन की आसक्ति, मान की आसक्ति, बढ़ाई की आसक्ति, निरोगता की, आराम की, सुख भोग की आसक्ति है, ये महान घातक है। चित्त में कई बातें याद आ जाए, भजन करते हैं बहुत बातें याद आती है, वो याद आना इतना दोष नहीं है। जो आसक्तिपूर्व याद आती है, प्रियता पूर्व जो याद आती है और उसमें जो चित्त खींचता है, ये महान अनर्थ का है। अब हम क्या करें? तो भैया दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करो और भगवान को पुकार, चलते फिरते उठते हे नाथ हे प्रभु आप में प्रेम हो गया, मिंद मिंद आगे आगे मिंद में भगवान से कहो, रो करके कहो, सच्चे हृदय से कहो कि नाथ आपके चरण प्रेम हो गया। अगर वो प्रेम हो जाए भगवान में तो आसक्ति मिल जाएगी। ये आसक्ति प्रेम से मिलती है, बहुत दूसरे उपायों से नहीं मिलती। भगवान मीठे लगने लग जाएंगे जहां भगवान मीठे लगे और संसार से मिटा सकता। कबीर मनवा एक है भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमाए। तो भगवान में प्रेम कर लो तो संसार की आसक्ति मिटेगी, अथवा भगवान से प्रार्थना करो, अथवा दूसरों को सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से, अपनी जो शक्ति है अपने पास उस शक्ति को दूसरों को सुख पहुंचाने में बाकी मत रखो, औरों को आराम पहुंचाने में अपनी शक्ति बाकी मत रखो। देखो कोई आसक्ति मिटती है कि नहीं, जरूर मिटती है। और उसके मिटने से जो लाभ होगा वो मन लगने से मात्र लगने से नहीं होगा, और आसक्ति मिटने के बाद मन लगाना शुरू हो जाएगा, सरल हो जाएगा, बड़ा सीधा। तो असंगयता आत्मना योगो दुष्प्राप, जिसका मन बस में नहीं है, भोगों में आसक्ति है, आराम में आसक्ति है, मान बढ़ाई में खिंचाव है, उसको योग प्राप्त होना अच्छा। और वश्यात्मना तो ये तथा सत्यो बातु उपाय, जिसका मन बस में है वो अब उपाय करे तो योग प्राप्त हो जाएगा। तो गीता में योग की बड़ी मेहनत, योग नाम किसका है? तो पातंजल दर्शन में तो पातंजल योग दर्शन में तो चित्त को लगा देने का नाम योग है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। परंतु भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते, तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम, परमात्मा के साथ संबंध हो जाए। जैसे आपका घनिष्ठ संबंध किसी कुटुंबी के साथ है, किसी का माँ में है, किसी का पिता में है, किसी का स्त्री में है, किसी का बालकों में है, किसी का धन में है, ज्यादा से ज्यादा प्रियता किसी एक जगह में है, वो सब एक जगह सबसे हट करके एक भगवान में हो जाए। फिर भैया और ये प्रार्थना करो भगवान से, और दूसरों को सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, भला कैसे हो, ते प्राप्तवंति मामेव सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित में रति प्रीति होनी चाहिए। हित करने का बड़ा महात्म्य, परंतु हित में ही रति होगी, प्रीति होगी भीतर। पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरे के सुख से सुखी, दूसरे के दुख से दुखी, जितने आप दुखी हो जाओगे उतना आपका बड़ा भारी उपकार हो जाएगा। ध्यान देकर सुने आप लोग, लोगों के वहम होता है कि पैसे वाले तो दूसरे की सेवा कर सकते हैं, पर जिसके पास पैसा नहीं वो सेवा कैसे करे, कैसे सुख पहुंचावे? तो ध्यान देना, दूसरों के दुख से दुखी होना, दूसरों के सुख से सुखी होना, ये सेवा हरेक कर सकते हैं। समझो मेरे पास एक कौड़ी नहीं है ही नहीं, अब मैं कैसे सेवा करूं? कोई दुखी हो उसे मिले तो हृदय में दुख हो जाए, राम राम बड़ा आदमी दुखी है, पैसा नहीं, कुटुंबी मर गए, बड़ा कष्ट हो गया इसको, क्या करे, ऐसे मेरे पुत्र दुख हो जाएगा, तो वो दुखी है उसका दुख हल्का हो जाएगा। आप करके दे दिए, दिया कुछ नहीं, पर दुख में सहमत हो गए ना हम, तो दुख से बट गया, उसका दुख इतना नहीं होगा। तो दूसरे के दुखी होने से दुख मिटता है, ऐसे ही सुखी होने से धन संपत्ति वैभव आराम मान सत्कार ठीक है, उसको देख कर हम सुखी हो जाए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ठीक है, सब राजी खुशी, हाँ बीमारी मिट गई घरों में ठीक है, ऐसी बहुत अच्छी प्रसन्नता की बात है, हम प्रसन्न हो जाएंगे, वो खुश हो जाएगा, राजी हो जाएगा वो। अब बोलो क्या खर्च किया हमने, दूसरे के सुख से सुखी होना, दुख से दुखी होना, यही सेवा है असली। अब पास में होगा तो जरूर खर्च करेगा ही, जैसे अपने को दुख होता है तो अपने दुख दूर करने के लिए खर्च करते हैं कि नहीं, ऐसे दूसरे को दुख होता है उस दुख से हमारे को दुख होता है उसकी सेवा में खर्च जरूर करेंगे, तो हमारा हमें दुख मिटाना है। सेवा की बात विदेश की मैंने सुनी थी, तो सेवा के लिए एक मीटिंग होने वाली थी सभा, उस सभा में सभापति थोड़ा सा देरी से पहुंचा, तो उसने क्षमा मांगी, तो विदेशों में समय के पाबंद होते हैं, तो भाई आज मेरी देरी हुई आज क्षमा करना। कैसे हो गई, तो मैं आ रहा था, एक सूअर का बच्चा गिर गया नाली में, छोटी सी नाली गिर गया उल्टा, अब बेचारा निकल सकता नहीं, तड़फड़ा रहा था, जल ज्यादा आ जाए तो मर जाए बेचारा, ऐसा विचार उसे निकालने में मेरी देरी लग गई, इस वास्ते मेरी देरी हो गई थोड़ी। तो लोगों ने कहा ये तो आपने ठीक ही किया, हमारी सेवा करने के लिए ये सभा बुलाई गई, इकट्ठे हुए आपने, तो सेवा में ही लगा समय, तो इसमें क्या बात है, तो ठीक ही है, आपने तो उस बच्चे को बेचारे को बचा लिया, तो सेवा ही हुई। तो वो कहने लगे सेवा नहीं की मैंने, सेवा नहीं की मैंने, तो मेरे मन को शांति दी, अगर वैसे छोड़कर चला आता तो मेरे बार बार याद आता और मेरे को दुख होता, तो वो दुख रूपी कांटा निकालने के लिए उसको निकाल दिया, मैंने सेवा नहीं की, अपना दुख मिटाया। मन में ये मैंने सेवा की, बड़ा उपकार उपकार कह दीजिए, अगर वैसे ही आ जाता तो मन में दलन रहती, याद आता बार बार, तो दूसरे के दुख से अपने हृदय में चोट पहुंचे, ये सेवा है। उपकार जितना हो सके उतना करो आप, इसमें क्या पैसा लगता है, ऐसे दूसरे के सुख में सुखी होने में सेवा है, तो सुखी होगी दुखी होगी दोनों की सेवा कर सकते हो आप, कोई भाई और कोई बहन ऐसा नहीं कह सकते कि हम इसमें परतंत्र है, इसमें क्या पराधीनता है, कौन सी पूंजी खर्च होती, पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर ये संतों के लक्षणों में आता है, संत कौन होते हैं, ये दूसरे के दुख से दुखी हो जाए और दूसरे के सुख से सुखी हो जाए, वज्रादपि कठोराणी और मृदुनी कुसुमादपि, संतों का हृदय कैसा होता है कि कठोर तो वज्र से भी कड़ा होता है और कोमल होता है फूल से भी मक्खन से भी कोमल होता है, कैसे कि उनके ऊपर दुख आकर पड़ता है तो वज्र की तरह कठोर होते हैं, पड़ो ही नहीं होते, या दूसरे का दुख देखते हैं तो पुष्प की तरह सह नहीं सकते, इतना फूल अपने दुख की परवाह नहीं, किसान दुख होता है और दूसरे का दुख नहीं सह सकते, वे ही संत होते हैं, उनका मन शुद्ध होता है, ये जो मन कैसे लगे किस तरह से भगवान में लग जाए, किस तरह से लगते हैं, दूसरे के दुख को दूर करना हमारा काम है। गीता में दो बार आया है सर्वभूत हितो, एक देखा ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वे मेरे को प्राप्त होते हैं। बारहवें अध्याय के चौथे श्लोक के अंत में ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते, और पांचवें अध्याय में आता है लघंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कलमशा छिन्नद्वेधायतात्मान सर्वभूत हिते, वो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं वो सर्वभूत हिते रहता है। अर्थ क्या हुआ, आप सगुण की प्राप्ति चाहते हैं तो सर्वभूत हिते रह होना होगा, आप निर्गुण की प्राप्ति चाहते हैं तो सर्वभूत हिते रहता होना पड़ेगा, संसार में सुखपूर्वक जीना चाहते हैं तो सर्वभूत हिते रहता होना पड़ेगा, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, इसमें प्रीति होनी चाहिए आपको, केवल प्रीति और कुछ नहीं कहते इतना खर्च करो उतना खर्च करो, ये नहीं है, केवल दुख दूसरे के हित में प्रीति, संसार को भी सुख होगा, संसार में भी ऊंचा दर्जा होगा, और सगुण और निर्गुण किसी की प्राप्ति करो आप ठीक हो जाओगे। सर्वभूत हितेरता प्राणी मात्र को सुख कैसे हो, ऐसी आपकी भावना होगी तो आपको दुख सता नहीं सकेगा, कितना ही दुख आ जाए आप पर असर नहीं पड़ेगा। तुम भजदादि पर थोड़ा नहीं हो जाओगे, दूसरों के लिए कोमल हो जाओगे तो अपने हृदय में अपने दुख सहने की शक्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, तो लोक में भी आपका हित होगा। आप समझो घर घर में भाई अथवा बहन किसी का ऐसा स्वभाव है कि दूसरे का दुख नहीं सह सकते, दूसरे को सुख पहुंचाता ऐसा भाई है अथवा कोई माँ है, तो उसका सब घर वाला आदर करेंगे और चीज भी उनको मिलेगी, आदर करेंगे तो देंगे, तो कमी क्या रहेगी, कमी नियत की है, खोटी नियत है, ये दरिद्रता यही है, मेरे को सुख मिल जाए, मेरे को लाभ हो जाए, नहीं औरों को लाभ हो जाए, औरों को सुख मिल जाए, किस तरह जिनका हित हो जाए, सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र के हित में उनकी प्रीति हो जाए, हित करने में, फिर मेरा उनका भला होगा ही, इसमें संदेह नहीं। आप भी जाति में जो ऐसे पुरुष है कि दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, हमारे गरीब है उनकी गरीबी दूर कैसे हो, उनकी जीविका कैसे चले, विधवा बहन माताएं हैं उनकी जीविका कैसे चले, उनका ठीक इज्जत आबरू ठीक रहते हुए उनको कहीं जाना नहीं पड़े, कहीं नौकरी करनी नहीं पड़े, और इस तरह से उनके बालकों की पढ़ाई कैसे हो, उनका जीवन निर्वाह कैसे हो, केवल आपका चिंतन होने लग जाएगी, ये चिंतन होने लगे कैसे आराम मिले, अपने कुटुंब भी है उनको सुख कैसे हो, भाई बंधु है उनको सुख कैसे हो, और आप कष्ट सह लो दुख सह लो, राजी हो जाएंगे। महाराजा जनक भगवान राम जी के दर्शन करने के लिए चित्रकूट पहुंचे, चित्रकूट पहुंचे तो राजा जी के साथ में अपने बड़े बड़े अहलकार और प्रजा थी ही, उन लोगों ने देखा जानकी जी, तो जितने बड़े बड़े अहलकार थे राजा के साथ प्रेम से रहने वाले लोग, हमारे राजकुमारी महाराजा जनक की बेटी आज जंगल में रह रही है, दुख हुआ उस बात को लेकर, पर महाराजा जनक मिले तो खुश हो गए और सिर पर हाथ रखा, हृदय राजा के बेटे पुत्री पवित्र किए कुल दो बेटा, तेरे दोनों कुलों को पवित्र कर, ये बात नहीं, हमारा कुल भी पवित्र हो गया, राम जी के साथ जंगल में आ गई, पर तेरा ससुराल का कुल भी पवित्र हो गया, उस पवित्र होकर एक कुल का पवित्र कुल का उद्धार करता है, पुत्री पवित्र किए कुल दो पवित्र कर लो, बाप के हृदय में प्रेम नहीं होता क्या, क्या पुत्री मामूली लगती थी क्या, बहुत प्यारी पुत्री थी जानकी जी महाराजा जनक की, वाल्मीकि रामायण में एक विचित्र कथा थी, राम जी ने कहा कि तुम यहां रहो, जानकी जी ने कहा कि मैं साथ चलूंगी, महाराज ने कई युक्तियां कही और रहने की बात कही, तो ये अपनापन से जानकी जी को थोड़ा क्रोध आ गया, अपनापन से प्रणय कोप होता है वो क्रोध क्रोध है, तो उसमें उसने एक विचित्र बात ऐसी बात कही कि मेरे पिताजी को ये पता होता कि ये छोड़कर जंगल में चले जाएंगे तो आपके साथ मेरा प्यार नहीं होगा, इतनी प्यारी पुत्री हूं मैं कुछ मामूल नहीं होगा, ऐसा पिताजी का स्नेह है मेरे पर आपको देते नहीं, आप छोटी बात कहते बाल्मी अपने तुलसी कृत में आया है, ऐसे ही वचन कठोर सुने कि तुम रहो, ऐसे सुनने के बाद में लोन हृदय भगवान मेरा हृदय नहीं फटा है, तो मैं जानती हूं कि आपका वियोग है उसको ये प्राण सहेंगे, ये मरे मंदिर जाएंगे नहीं, राम जी देखा मर जाएंगे, इनके छोड़ने से मर जाएगी, अपने आराम के लिए भाई साथ मेरे सेवा करेगी, शरण कापी करेगी हमारी करेगी। ये लोग राम जी को सुखने में नहीं था, ये मर नहीं जाएंगे तो अच्छा चलो स्वीकार करना पड़ा। इतनी प्यारी पुत्री थी सीता जी को इतना विश्वास, मेरे पिताजी ऐसे मेरे पर स्नेह रखते हैं प्यार करते हैं, आपके प्रति ये विचार हो जाता कि मेरी कन्या को घर पर छोड़ के दिन में चले जाए, आप सत्या ऐसे स्नेह रखने वाले पिताजी खुश होते हैं प्रसन्न होते हैं जानकी जी पर, तो किस बात पर होते हैं कि बेटा अपने धर्म का पालन है। जंगल के रहने जंगल के रहने से दुख तो होता ही है, कहाँ रहे क्या खावे कहाँ सोए कहाँ बैठे, राजघराने में पैदा हुई प्यार से पली हुई बड़े राजघराने में ब्याही गई, बचपन से लेकर आराम में नहीं, अब वो जंगल में रहने मिले। चित्र लिखे कपि देख डराती, बंदर लिखा हुआ चित्र रहा हो तो डर जाए, ऐसे कोमल दे जिस जाने दीजिएगा वो जंगल में तो सब दुख होता है। जो स्नेह रखते हैं प्यार करते हैं अपनी पुत्री से भी बढ़कर मानते हैं ऐसे बड़े ऋषि मुसद्दी हकमारे, उनको दुख होता है कि हमारी राजपुत्री इतना कष्ट उठा रही है, हमारा राजा ना खुश। तो कुटुंबियों के सुख करने का भी उपाय यही, उनका हित सा हुआ। लोग देखने वाले दूर रहने वाले महाराज आपकी जाति नाति के नहीं वे खुश हो जाए प्रसन्न हो जाए, दूसरों के हित में आप मिलती। तो ये जो आसक्ति है भीतर की मिटती नहीं जब तक आपके स्वार्थ बुद्धि है, अपना सुख भोगना चाहते हैं अपने धनी कथा करना चाहते हैं तब तक नहीं मिलती। जब वैगी लालसा हो जाए किसी भाव के लिए आप उपकार करना शुरू कर दो, दुख है जहां दुख है आपके चिंतन का भोगों का दुखियों का ये आसक्ति का जो दुख है वो दूसरों के दुख सुख देने से मिल जाए बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये इसका उपाय है। दुख हो जाए ये हम सही करें, उसको भी आराम उसको भी सुख मिले। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों बेटों को मार दिया, सोचो द्रौपदी को दुख हुआ, एक लड़का भी मर जाए तो मां को कितना कष्ट होता है, पांचों लड़कों को मार दिया। तो भगवान ने कहा भाई उसको लाओ भीम से अर्जुन जाओ उसको पकड़ो उसको मारो, अश्वत्थामा को पकड़ रहा है और पकड़ करके क्या करें द्रौपदी के सामने लाए। भगवान ने कहा देखो ऐसे बाल हत्या करने वाला मारने के लायक होता है और गुरु पुत्र है वो गुरु रूप से है इस वर्ष को माना चाहिए नहीं, बड़ी मुश्किल हो अब क्या करें। भगवान दो बात अपराध करे तो भी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, अरे आपके गुरु का पुत्र है ब्राह्मण भी सामान नीचे और ये तो बच्चों को मार दे मार देना चाहिए। समझ में नहीं आया क्या करेंगे ये मारे कि न मारे। द्रौपदी को पूछा गया द्रौपदी कह रही मारो, उस हालत में द्रौपदी कह रही कि नहीं मारो मारो मत, क्यों कि बेटे के मरने से दुख होता है वो मैं जानती हूं, इस बार से कृति को कितना दुख होगा इसकी मां को, जो बेटे मरने का दुख मेरे को पता है ना तो उस मां को कितना दुख होगा इस वजह से मारूंगा भगवान के इसकी बात भी रखो। और गुरु पुत्र को मारना नहीं चाहिए और ऐसे हत्या करो उसको मार देना चाहिए। फिर तो उसको मुंडित करके आ रहा और यहां की मणि थी वो निकाल ली और मरे जैसे ही हो गया अपमान हो गया। बात द्रौपदी की देखी जाए तो बड़ी विचित्र बात है, पांचों बेटों को मार दिया एक बेटा भी नहीं रहने दिया। अश्वत्थामा ने विचार किया कि पांडवों का वंश नष्ट कर देना, उनका ही नाश कर देना, बस न रह जाए पीछे, ऐसा दुश्मन भाव। उसके प्रति भी द्रौपदी किस समय में, जिस समय में लड़के मर गए, अरे दुख हो रहा है, वो मार दिया उसने उसको, सो तो हूं द्रौपदी को देखो, बहन माताओं में कितनी उदारता होती है, कितना वो पहचानती है कि लड़के के मरने से कितना दुख होता है। हमारी कृपी माता है ब्राह्मणी, उसको कितना दुख होगा बेटे के मरने से। तो अपना विचार करे ना भी, तब ये भाव होता है हित करने का, तो वो अपना दुख से अपना कष्ट सह लेती है, और का कष्ट नहीं लेती, ऐसा ही दुख औरों को होता है। ये जब बात हृदय में आवेगी, सर्वभूत हितेरता प्राणी मात्र के हित में ये प्रति प्रीति हो जाएगी, तो आपका दुख दुख नहीं रहेगा, फिर चित्त आपका पवित्र हो जाएगा, और पवित्र चित्त परमात्मा में लग जाता है। तो चित्त पवित्र करने के लिए एक ही बात, सर्वभूत हितेरता प्रीति हो जाएगा तीन उनमें, दूसरों के सुख में, दूसरों के आराम में, दूसरों के भले में, दूसरों के कल्याण में प्रीति हो जाएगी, रुचि हो जाए, इसमें सब बन जाए कल्याण के हित के, तो महाराज जी मन की शुद्धि होती, नहीं तो शुद्धि हृदय में ये कष्ट नहीं लगेगी। जब कोई भी दुखी होता है उसका दुख सहा नहीं जाता, शत्रुता रखने वाला भी दुखी हो जाता है, दुख नहीं सह जाता, ऐसा अंदर में भाव हो शुद्ध, फिर भगवान में मन लग जाएगा, आशक्ति मिल जाएगी, काम मिल जाएगा। मन कैसे ठीक लगे ये बात है, ये मन का मन है। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछ,
कुछ मृतक प्राणी को वास्ता है चला जाए,
देखो किसी की मृत्यु हो जाती है उससे घर वालों को दुख होता है, ये तो स्वाभाविक है, हम चाहते थे और नहीं रहे, उनको बुखार आ गए भी नहीं चाहते, मर जाए अचानक मर जाते, और ज्यादा दुख होता है, तो क्या करना चाहे। तो भाई उनके पीछे भगवान का नाम जपो, नाम कीर्तन करो, रामायण का पाठ करो, भागवत बचाओ, भागवत का पाठ करो, स्वयं हो तो सहस्त्र नाम का पाठ करो, दान पुण्य करो, शास्त्र की विधि के उनसे काम करो, और हर समय भगवान को याद रखो, नाम जप करो और उनको भगवान के नाम में दे। दुख क्यों होता है ये बारीक बात है, दुख होने का खास कारण क्या है, लोग तो समझे कि वे मर गए इस बार दुख होता है, मरने से दुख हो तो मरने बहुत मरते भी, कई चीटियां मर जाती है, कई कुत्ते मर जाते हैं, कई जीव जंतु समुद्र में रहने वाले मछलियां मर जाती है, तो मरने मात्र दुख होता है क्या, वो तो हर दम होना चाहिए, तो मरने का दुख नहीं है, दुख है उनसे सुख लिया है और सुख की आशा है, वो आशा बाकी रही, ये सुख पहुंचाएंगे, हमारे को लाभ देंगे, तो लाभ दिया है तो सुख तो दिया है, सुख की आशा है वो भंग होगी उसका दुख। इस वास्ते कुटुंबियों से सुख मत लो, सावधान हो जाओ, सुख दो ही दो, सुख लो मत, सुख न मिले न ले तो क्या रोटी न खावे, रोटी खाओ पर सुख मत लो, रोटी खाना कपड़ा पहनना ये चीज और है, सुख लेना एक और, अपने में अभिमान करे और सुख ही राजी हो जाए ये और चीज है। अरे भाई थोड़ा पूंजी हो जाए तो कपड़ा पट्टी बांधते हैं कि नहीं, घोड़ा हो जाए तो उसको मलम लगाते हैं कि नहीं, ऐसे भूख रूपी घोड़ा पर अन्न रूपी मलम लगाना है, और शरीर रूपी घाव है ये रह नहीं सकता, इस बात कपड़ा बांधना है, तो पट्टी बांधने में कोई श्रृंगार करता है क्या, कन मलम लगाने में कोई स्वाद लेता है, बढ़िया है क्या, कभी घाव हो गया घाव पूरा करो किस देर से ही, ऐसे भूख रूपी घाव को पूरा करना, ऐसे शरीर फोड़ा फूसी ऐसा है नहीं चलता, पट्टी बांध लो, ऐसे कपड़ा पहन लो, सुख भोग की दृष्टि से आप करोगे वो आपको बांधेगा, सुख भोग की दृष्टि नहीं है ऐसे निर्वाह की दृष्टि बांधेगी नहीं,
कभी नहीं बोले।
आप सुख भोग की दृष्टि से करते हो बोलो कि हमारा समाज है उसमें हम ऐसे रहे, तो समाज की दृष्टि से रहो, समाज की दृष्टि से सभ्यता लेने का काम कर दो, अपने सुख के लिए नहीं, अपने आराम के लिए नहीं, मेरे को लोग बढ़िया समझे अच्छा समझे, ये भोग है। सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, ऐसे करते हो तो मृतात्मा को सुख कैसे, आराम कैसे हो, तो उसे रोने से दुख होता है। मैंने पढ़ा है पुस्तकों में श्लेष्माशु बांधवीर मुक्तम केतु भूते यथो वशा तस्मा नहीं रोज कद्यम ही क्रिया कार्य स्वशक्ति का। भाई बंधु कुटुंबी स्त्री पुत्र आदि रोते हैं अपने माता पिता के मर गए उनके लिए, वो मरकर चला गया तो रोते हैं, जिसमें आंसू पड़ते हैं कब गिरता है सेज आता। तो लिखा है श्लेष्माशु बांधवीर मुक्तम, उसके बंधु संबंधियों के द्वारा आंसू और सेजा गिरा गया, वो प्रेतात्मा को भोगना खाना पड़ता था उसको। तुम्हारे निमित्त से तुम्हारे कुटुंबियों ने दिया, आप पानी दो पिंड दो वो मिलेगा, उसके निमित्त से सेजा आंसू दो नहीं मिलेगा, ये खाना पड़ेगा। प्रेतो घूमते ये तो अवस्था परवश है, वो तुम्हारे कुटुंबियों ने दिया ले, इस बात से रोना नहीं चाहिए। दान पुण्य करो, शुभ काम करो, कीर्तन करो उसके नाम से। ये सेजा और आंसू तो बड़ी आसक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक दिया है ना, आकर्षण करके दिया है, ये दिया हुआ खाना पड़ेगा, इस बात से रोना नहीं। कीर्तन करो, नाम जप करो, शुभ काम करो, दान करो, पुण्य करो, जितना एक शुभ कर्म कर सको उतना करो, अगर उसका फल उनको
सूतक में और रामायण सूतक में क्या
रामायण पाठ करो, आप सूतक में पढ़ो तो वो किसी भी ध्यान से वो नहीं होगा, परंतु भगवान के चरित्र का महत्व बड़ा होगा, विशेष होगा।
तो लोग तो निर्णय आगा,
लोग समझते नहीं बेचारे, लोग क्या समझे, लोग तो कहेंगे देखो इनके शोक ही नहीं, बड़े कथा करते हैं तो बड़ी अच्छी बात, ऐसा कहे उनको कह दो आप ऐसी आशीर्वाद दो हमारे शोक न हो।
आशीर्वाद
शोक होना बढ़िया चीज है। अर्जुन के शोक हुआ न तुम सोच तुम्हारे से, न तुम सोच तुम्हारे से, नहीं तुम सोच तुम्हारे से, नहीं तुम सोच तुम्हारे से, बार बार इसे सोच नहीं करना चाहिए, सोच नहीं करना चाहिए, भगवान कहते हैं। और साफ आगे रहे माँ सुधर संपदम देवी बीजा तो रिमो देवी संपत्ति उपरा तो मत कर। अंत में कहा सर्व पाप है जो मोक्ष ऋषा में माँ सुधर तो मत कर, वो शोक क्यों नहीं करते, भगवान ने मना किया, इस बात से शोक नहीं करते। अरे आप भी आशीर्वाद करो तो तुम्हारे शोक है ही नहीं, ऐसी कृपा तो हमारे शोक भी मन में होता है, आप आशीर्वाद दो, मन में शोक हो ही नहीं हमारे। अरे आप भी ऐसा करो, शोक मत करो, शोक कोई बढ़िया चीज तो है, मिर्जा बड़ा अच्छा। अब लोग कहते वो करते शोक तो वो समझे सभी शोक करे, तो सभी क्यों करे, तो सभी रो मेरो अथेरो रो
शोक को
रखे, हाँ तो शोक राखो क्या जरूरी है क्या
जरूरी है ना, मैं तो मिलन गया हुई तो आपकी पार्ट में बैठी कोई बात करेंगे,
बहुत अच्छी बात सही पार्ट करो
आप भी पढ़ते सहन नहीं होता ना महाराज, जैसे कहते हैं ना समाज में
सही शांत हो गया। गोविंद गाजी जय दयाल जी, तो बद्रीदास जी बड़े वही थे तो वहां भी थे वो, उनसे मैंने कह दिया कि अपने शोक सभा नहीं करनी, परमार्थ निकेतन में शोक सभा कर, मैंने उनसे पहले कह दिया कि मेरा मन नहीं जाएंगे, हमारे शोक सभा है ही नहीं, शोक किस बात का। शेर जी चले गए, हमारे तो बहुत आधार था, सब तरह ठीक थे, पर चले गए तो शोक सभा करनी, वे परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित है, उनके शोक चिंता करना होगा, अपमान करना है, उनका शोक करना है। बड़ी दादी मेरे को बुलाया कहते स्वामी आप नहीं जाओगे ठीक नहीं रहेगा, आप उठाना चाहिए, मैं तो बीमार पड़ा हूँ। तो शोक सभा अगर वचन नहीं लगे, शोक सभा क्या है? सावधानी की सभा करो, यदि ऐसे ही तो मरना पड़ेगा, सावधान हो जाओ। जिन मजा को जोड़ो से क्या पता किस समय चला जाता है, तो शोक सभा गया। शोक कोई बढ़िया चीज है, तुम शोक मनाओ, शोक मनाओगे, शोक क्यों मनाओ? आनंद बनाओ, मुक्ति करो, कल्याण करो, सब कीर्तन करो, जप करो, रामायण का पाठ करो, जिस तरह से उसका कल्याण हो जाए वो करो। शोक से उसका कल्याण होगा कि हमारा कल्याण होगा कि दुनिया का कल्याण होगा, बताओ, कोई बता दो। आप इतने बैठे हो, शोक से किसी का कल्याण होगा क्या? हम शोक करें हमारा कल्याण हो जाएगा? अरे कल्याण तो भगवान शोक भी मना क्यों करना? शोक से कल्याण तो भगवान की याद करने से वो नाम कीर्तन करो। कितने बोलो 12 दिन नहीं हो गया, पहले ही दिन पाठ करो, जल्दी करो अपने पाठ। एक दिन छोड़ोगे तो अपने पाठ करो, जप करो, कीर्तन करो, भगवान में लगो और लगाओ। तुम एक बैठो में गया जो बात ही को नहीं करे, तो बात करते शोक ही बढ़ाता और क्या न्याल करता। माइयों को रोना रोना दो चीज बढ़ जाती, रोना भी आता, रुलाना भी आता। छोरा छोटा सा मर गया ना तो भी जाएगा, वो मर गया छोटा था, ये छोटे से ही बड़ा होता है। अर्थ हुआ कि बड़ा मरे जितना रो, बड़ा मर गया रो जितना रो छोटे के लिए, अर्थ ये हुआ और क्या निकला? छोटे से तो बड़े होते हैं। और ऐसा था क्यों गोदी में आता, ऐसा उसका स्वभाव था, ऐसा ऐसे याद करा कि माँ रो पड़ेगी, तो रुलाना भी आता है, रोना भी आता है। क्या विद्या सीखी? हंसाओ, काफी लोग पसंद रहो कि भाई एक प्राणी चला गया तो छोटे छोटे बालक अपने गोदी में से चले जाते हैं, तो अपने जीने का क्या भरोसा है? अपने जिंदे बड़े हुए जो मुकुद में हो गए, बालक बड़े में चले जाते यार। अब भी क्या पता है, मौत तो सदा हरदम खुली, इस बात से मर जाओ तो सावधान हो जाओ बस। अब भजन को विशेष बात शोक क्यों मनाए? अपने तो भजन में लगो, भगवान में लगो, उनका कल्याण कैसे हो, ऐसा उपाय कुछ विधि सहित ब्राह्मणों से विधि कराओ, ठीक तरह से उनके पीछे जो क्रिया होती है मृतात्मा के लिए वो ठीक साथ विधि से करो, और करो उत्साह से करो, विधि विधान से करो। चूरू में एक भाई बीमार हुए तो ब्रह्मचारियों को बुलाया, मैं वहीं था, बुलाया, कीर्तन कराया। उसकी स्त्री महाराज देख कीर्तन करो, मेरे को बुलाया आप कीर्तन ही सुनाओ, वो बाहर बैठे। फिर उसे बात करनी थी, स्वामी मेरी बात करनी, बात कर लो, हम दो दूर हो गए, बात करता था मेरे, आप सुनो, ज्यादा डिबेट ही नहीं, इनका कल्याण हो जाए, इनका किस तरह से उद्धार हो जाए, हमारा दुख तो हम उम्र पर भोगेंगे परंतु इनके कहीं मरना बिगड़ न जाए, उसमें भगवान की स्मृति न छूट जाए, ऐसा भाव दे कीर्तन करो, भगवान का नाम करो। रोई नहीं आता सही साथ होगा,
मन दिख जाएगा। गीता जी को पाठ भी कर सकते,
गीता जी को पाठ करो, रामायण को पाठ करो, कीर्तन करो, भगवान नाम लो, वो विधि विधान से करना जाता है, वो तो भाई वैसे विधान से पवित्रता से होगा, दान पुण्य आदि होगा तो विधि विधान से होगा, वो विधान पूजा है। और भगवान नाम में तो विधि विधि है। कल संतरण उपनिषद में नारदो ब्रह्मानंद जगा, ब्रह्मा जी के पास गए नारद से कि महाराज कलयुग से उद्धार कैसे हो, तो भगवान नाम से कौन सा नाम है वहाँ बताया, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे। यदि षोड़ कम कल कलमश ना समझे, 16 नामों का जो 32 अक्षरों का मंत्र है, ये कलयुग के पापों का नाश करने वाला। तो नारद जी ने पूछा कोष से विधि थी, इसकी विधि क्या है बताए, सहोजा होगा सब प्रजापति नाश से विधि, इसी विधि नहीं, किसी विधि से शुद्ध हो अशुद्ध हो किस तरह से हो कोई हो, नाम लिया जाओ तो भगवान नाम में विधि नहीं है, मंत्र जप किया जाएगा, जप कराया जाएगा तो उसमें विधि, तो वैसे ही विधि से कराया जाएगा। नाम क्या है? संबोधन है, पुकार है, पुकार पुकार में विधि नहीं होती। अब चोर रात को मारे हैं, विधि क्या है ऐसा पुकारने के, बताओ, चोर मार रहे हैं, रात को मार रहे हैं, अब पुकारने की विधि बताओ सर, पर विधि क्या, रोज जोर से, ये विधि है।
लेके जाता है।
अच्छा भगवान को पुकारो भी नहीं क्या है, विदेश में हृदय का भाव वो विदेश में मुख्य, जितनी कसब होगी गुणा होगा भीतर में जितना वही विधि होगी वो नहीं उठे, ये विधि शांतिपूर्वक अनुष्ठान करना हो उसमें विधि विधान से बोल भाई विधि किंचित मात्र भी कमी नहीं होने जो साथ में लेगा वैसा, बोले ये भी साथ में लेगा पुकार की बात तो ये थोड़ी नारायण नारायण
नारायण। स्वामी जी महाराज का दूसरा सत्संग का कार्यक्रम रात्रि में 7:45 से क्रॉस मैदान धोबी तालाब के पास जो पंडाल बना है उसमें है, और केवल आज आज के लिए आपका यहाँ पधारना हुआ है, कल वापस कोलकाता पधारेंगे, कलकत्ता से अभी आए हैं।
नारायण नारायण नारायण। कलकत्ता में सत्संग चल रहा है,
रमेश जी बोले रमेश।